एकत्र ज्ञानगोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं जो सही में आपको अपने आसपास की दुनिया, मतलब रोज की चीजों को देखने का ढंग बदल सकती है। सोचिए एक विज्ञापन जो आप टीवी पर देखते हैं, या बच्चों के खेलने के खिलौने, क्या वो बस वही हैं जो दिखते हैं?
बिल्कुल, यही सवाल उठाया था एक फ्रेंच विचारक रॉलिन बार्सेज ने। उनकी एक बहुत ही प्रभावशाली किताब है मिथोलॉजिस, और ये किताब देखिए लिखी तो गई थी करीब 70 साल पहले, लेकिन आज के ज़माने में जहां हम हर तरफ से संदेशों से घिरे हैं, विज्ञापन, सोशल मीडिया, यू नो पॉलिटिक्स, इसकी अहमियत शायद और भी ज़्यादा है।
हाँ, सही कहा। ये किताब एक तरह का चश्मा है, समझ लीजिए, जिससे हम ये देख पाते हैं कि कैसे जो चीज़ें हमें बिल्कुल नॉर्मल या स्वाभाविक लगती हैं, उनके पीछे असल में गहले मतलब छिपे होते हैं, और अक्सर कोई ना कोई विचारधारा भी।
और ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे हमारी पसंद, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारे सपने भी कहीं ना कहीं अनजाने में गढ़े जाते हैं।
बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार पड़ताल। पहले ज़रा लेखक के बारे में बात कर लें। रोलिन बाथिस कौन थे ये?
हाँ, तो रोलिन बाथिस 1915-1980 फ्रांस के एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे। मतलब वो साहित्यिक आलोचक थे, दार्शनिक थे, भाषाविद थे, और ख़ास तौर पर जिसे कहते हैं संकेत विज्ञानी या सेमियोटिशियन।
सेमियोटिशियन यानी संकेतों और प्रतीकों का अध्ययन करने वाले।
एग्जैक्टली, संकेतों और प्रतीकों के एक्सपर्ट। और वो 20वीं सदी के फ्रांस के बौद्धिक जगत में एक बहुत बड़ा नाम थे।
और उनकी सबसे खास बात क्या थी? मतलब क्या अलग था उनके काम में?
उनकी खासियत ये थी कि उन्होंने संकेत विज्ञान के जो सिद्धांत थे, जो ज़्यादातर भाषा पर लागू होते थे, उनको भाषा से आगे बढ़कर रोज़मर्रा की चीज़ों पर लागू किया।
अच्छा, जैसे?
जैसे उन्होंने पूछा, भाई क्या एक नई कार या किसी का हेयर स्टाइल या खाने का मेन्यू, क्या ये भी एक तरह की भाषा नहीं है? क्या ये चीज़ें हमसे बात नहीं करती, कोई संदेश नहीं देती?
वाह, ये तो बिल्कुल अलग सोच है। मतलब चीज़ों को भी पढ़ना एक तरह से।
हाँ बिल्कुल, वो एक तरह के कल्चरल डिटेक्टिव थे, आप कह सकते हैं।
अच्छा।
उनकी नज़र गज़ब की थी। वो रोज़मर्रा की घटनाओं को, किसी मैगज़ीन कवर को या कुश्ती के मैच को देखकर उनमें छिपे हुए गहरे सांस्कृतिक कोड और मूल्यों को पकड़ लेते थे।
मतलब वो सिर्फ सतह नहीं देखते थे, उसके नीचे क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते।
सही कहा, इसीलिए उन्होंने खुद को मिथोलॉजिस्ट कहा, यानी मिथकों का अध्ययन करने वाला। वो चीज़ों को जस का तस स्वीकार नहीं करते थे।
तो अब आते हैं किताब पर। मिथोलॉजिस, इसका मेन आइडिया क्या है? किताब कहना क्या चाहती है?
देखिए, ये किताब जो है वो कल्चरल क्रिटिसिज्म यानी सांस्कृतिक आलोचना का एक बहुत बड़ा काम है। ये हमें सिखाती है कि हम लोकप्रिय संस्कृति को, अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझें, कैसे उसका विश्लेषण करें।
मतलब हमें औजार देती है दुनिया को समझने के।
हाँ बिल्कुल, ऐसे औजार जिनसे हम ये देख सकें कि जो चीज़ें हमें नेचुरल लगती हैं वो असल में कैसे बनाई गई हैं, उनके पीछे क्या इरादे हैं। और ये सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं है, ये हम सबके लिए है जो समझना चाहते हैं कि समाज कैसे काम करता है।
और किताब का जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है, मुख्य तर्क
ये है कि हमारा जो आधुनिक समाज है वो मिथकों से भरा हुआ है। अब यहाँ मिथक का मतलब वो देवताओं वाली पुरानी कहानियों से नहीं है।
अच्छा, तो फिर क्या मतलब है?
बार्थिस के लिए मिथक एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है, एक तरीका है जिससे समाज में कुछ खास विचारों को स्वाभाविक, सच और हमेशा से ऐसा ही है वाला बनाकर पेश किया जाता है।
और ये होता कैसे?
ये होता है रोज़मर्रा की चीज़ों के जरिए, सांस्कृतिक प्रथाएं, मीडिया में जो दिखाया जाता है, जैसे बार्थिस ने उदाहरण दिए कुश्ती के, डिटर्जेंट के विज्ञापनों के, वाइन की बोतलों के, बच्चों के खिलौनों के।
हाँ, ये सब तो बड़ी साधारण चीज़ें हैं।
बिल्कुल, लेकिन बार्थिस कहते हैं कि ये साधारण या मासूम नहीं है, ये एक दूसरे क्रम की भाषा या मिथक की तरह काम करती हैं। मतलब ये किसी जानी पहचानी चीज़ को लेती हैं और उसमें चुपके से एक गहरा, अक्सर विचारधारा से जुड़ा सांस्कृतिक संदेश डाल देती हैं।
और बार्थिस के हिसाब से ये अक्सर किसके फायदे के लिए होता है? वो किस खास मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं?
वो खास तौर पर इस बात पर ध्यान देते हैं कि कैसे समाज का जो प्रभावशाली वर्ग है, जिसे वो बुर्जुआ या पूंजीपति मध्य वर्ग कहते हैं, वो अपने मूल्यों और अपनी सोच को ऐसे पेश करता है मानो वो सार्वभौमिक हों, प्राकृतिक हों, जैसे वो हमेशा से ही सही थे।
अच्छा, मतलब अपने विचारों को सबके विचार बना के पेश करना।
हाँ, और मिथक किसी काम का औजार है। वो किसी चीज को उसके इतिहास से, उसकी राजनीति से काट कर अलग कर देता है और उसे बस एक सीधी साधी कॉमन सेंस वाली बात बना देता है। तो किताब का लक्ष्य है हमें इन मिथकों को पहचानना सिखाना, उनकी परतें खोलना सिखाना।
ये तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। तो किताब में ये सब समझाया कैसे गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है?
किताब की बनावट भी थोड़ी अलग है। दो मेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा, जिसका नाम भी मिथोलॉजीज है, उसमें 53 छोटे छोटे एसेज हैं। हर ऐसे फ्रांस की उस वक्त की 1950s की पॉपुलर कल्चर के किसी एक मिथक का विश्लेषण करता है।
अच्छा, मतलब छोटे छोटे केस स्टडीज जैसे, किन चीजों पर?
हाँ बिल्कुल, और बड़े मजेदार विषयों पर, जैसे स्टेक एंड फ्राइज, स्ट्रिप्टीज का शो, डिटर्जेंट पाउडर, ज्योतिष, रोजमर्रा की चीजें।
तो पहले असल दुनिया के उदाहरण।
एग्जैक्टली. और फिर आता है दूसरा हिस्सा, जो ज्यादा थियोरेटिकल है। उसका नाम है मिथ टुडे।
मिथ टुडे,
ये हिस्सा उन सारे उदाहरणों के पीछे का सिद्धांत समझाता है। मतलब ये बताता है कि मिथक असल में बनता कैसे है, काम कैसे करता है।
ये तरीका तो अच्छा है, पहले कॉन्क्रीट बातें फिर थियोरी।
हाँ, ये काफी प्रभावी है। पहले उदाहरणों से बात समझ में आती है, फिर उसका फ्रेमवर्क पता चलता है।
तो चलिए पहले हिस्से से कुछ मशहूर उदाहरणों पर बात करते हैं, उनसे शायद बार्थिस का तरीका और साफ हो जाएगा। आपने कुश्ती का जिक्र किया था।
हाँ हाँ, कुश्ती की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ रेसलिंग वाला निबंध तो क्लासिक है। बार्थिस कहते हैं कि जो प्रोफेशनल रेसलिंग होती है उसे एक खेल समझना ही गलत है, मतलब जहां असली मुकाबला हो रहा हो।
तो फिर वो क्या है?
वो एक तमाशा है, एक नाटक है। ये अच्छाई और बुराई के संघर्ष का एक बहुत ही एग्जैजरेटेड नाटकीय प्रदर्शन है। पहलवान सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, वो प्रतीक होते हैं। उनके शरीर, उनके हाव भाव, मैच की पूरी स्क्रिप्ट, सब कुछ एक बहुत साफ नैतिक संदेश देने के लिए होता है।
जैसे फिल्मों में होता है, हीरो विलन।
बिल्कुल, एक तरफ एकदम नेक हीरो, दूसरी तरफ मक्कार विलन, जिसे अक्सर विदेशी या घमंडी दिखाया जाता है। और दर्शक वहां कौन जीतेगा ये देखने नहीं जाते, वो जाते हैं न्याय का एक साफ सुथरा ड्रामा देखने, जहां दर्द, बेइज्जती, बदला, इन सबका खुलकर प्रदर्शन होता है।
अच्छा, तो बार्थिस ने इस ऊपरी चीज, खेल, के नीचे छिपे मतलब नैतिक नाटक को पकड़ा।
हाँ, यही उनकी विधि है, सतह के पार जाकर गहरे प्रतीवात्मक कोट को उजागर करना।
ये तो वाकई दिलचस्प है। और वाइन वाला उदाहरण, फ्रांस और वाइन का तो गहरा रिश्ता माना जाता है।
बिल्कुल, माइन और दूध वाले निबंध में वो यही दिखाते हैं कि फ्रांस में वाइन सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, वो फ्रांसीसी पहचान का एक बहुत ताकतवर मिथक है।
मिथक कैसे?
उसे ऐसे पेश किया जाता है मानो वो फ्रांसीसी होने का एक जरूरी हिस्सा हो, एक ऐसी चीज जो समाज में बराबरी लाती है, क्योंकि मजदूर भी पीते हैं, पढ़े लिखे भी, जो मर्दानगी का प्रतीक है, जो फ्रांसीसी लोगों को उनकी जमीन से, उनके इतिहास से जोड़ती है।
लेकिन वाइन से जुड़ी समस्याएं भी तो होंगी।
हाँ, और यही मिथक की चालाकी है। वो वाइन से जुड़ी दिक्कतों को, जैसे शराबखोरी या उसका औपनिवेशिक इतिहास, इन सबको अनदेखा कर देता है। और इस तरह वाइन पीना एक तरह से देशभक्ति का काम बन जाता है, फ्रांसीसी होने का सबूत।
कमाल है, हम भी सोच सकते हैं भारत में चाय या क्रिकेट के साथ क्या ऐसे ही मिथक जुड़े हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खिलौनों के बारे में क्या कहा उन्होंने? ये तो बच्चों की दुनिया है, मासूम।
कई बातें फिर चौंकाते हैं। खिलौने, टॉयज वाले निबंध में वो कहते हैं कि ज्यादातर जो आधुनिक खिलौने हैं, खासकर प्लास्टिक वाले नकलची खिलौने, वो बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं बने हैं।
तो फिर किस लिए बने?
वो बच्चों को बड़े होकर जो उनकी भूमिकाएं होंगी पूंजीवादी समाज में, उसके लिए तैयार करते हैं। जैसे लड़कियों के लिए गुड़िया, रसोई के सेट, ये उन्हें घरेलू काम सिखाते हैं। लड़कों के लिए बंदूकें, कारें, औजार, ये उन्हें काम, टेक्नोलॉजी या युद्ध के लिए तैयार करते हैं।
कपड़े, खिलौने भी ट्रेनिंग दे रहे हैं।
हाँ, बार्थिस उन्हें वयस्क दुनिया के छोटे मॉडल कहते हैं, जो समाज के बने बनाए ढांचों को नॉर्मल और मज़ेदार बना के पेश करते हैं। वो इनकी तुलना लकड़ी के साधारण गुटकों जैसे पुराने खिलौनों से करते हैं, जो ज्यादा खुले होते हैं, जिनसे बच्चा कुछ भी बना सकता है।
ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था इस तरह से। और वो सिट्रोइन कार वाला क्या मामला था?
नई सिट्रोइन में बार्थेज 1950s के दशक में आई एक नई कार सिट्रोइन डीएस के लॉन्च का विश्लेषण करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे उस कार को सिर्फ एक गाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक जादुई लगभग देवी जैसी वस्तु की तरह पेश किया गया था।
देवी जैसी?
हाँ, जैसे पुराने जमाने में लोग बड़े बड़े कैथेड्रल को देखकर हैरान होते थे, वैसे ही आधुनिक लोग इस कार को देख रहे थे। उसका डिजाइन, उसकी एकदम चिकनी सतह, उसकी छिपी हुई मशीनरी, सब उसे रहस्यमयी और आकर्षक बना रहा था।
और इसका मिथक क्या था?
बार्थेस कहते हैं कि ये मिथक कार को उसके बनने की प्रक्रिया से, मतलब मजदूरों की मेहनत, फैक्ट्री, पैसा, इन सबसे काट देता है और उसे इच्छा की टेक्नोलॉजी से उद्धार की वस्तु बना देता है। ये उपभोक्तावाद और तरक्की के मिथक को और पक्का करता है।
ये उदाहरण तो वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं, दिखाते हैं कि कैसे साधारण चीजों में गहरे मतलब हो सकते हैं। लेकिन ये मिथक बनते कैसे हैं? वो जो दूसरा हिस्सा है मिथ टुडे, वो क्या कहता है इसके बारे में?
हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है, पर मुश्किल नहीं है। बार्थेस मिथक को कहते हैं दूसरे क्रम की संकेत प्रणाली,
सेकेंड ऑर्डर सेमियोलॉजिकल सिस्टम।
बाप रे, ये तो भारी बरकम नाम है।
हाँ, पर फंडा सिंपल है। पहले हमें भाषा विज्ञानी सास्यूर का बेसिक मॉडल समझना होगा। कोई भी संकेत साइन दो चीजों से बनता है, एक संकेतक सिग्निफायर यानी रूप, जैसे गुलाब शब्द की आवाज या फूल की तस्वीर,
और एक संकेतित यानी उसका मतलब, वो असली फूल या उसका कॉन्सेप्ट।
ठीक है, संकेतक प्लस संकेतक इज इक्वल टू संकेत, रूप प्लस मतलब इज इक्वल टू अर्थपूर्ण चीज, जैसे गुलाब।
बिल्कुल, ये हुआ पहला स्तर, सीधा साधा मतलब। अब बार्थेस कहते हैं मिथक क्या करता है, वो पहले स्तर के पूरे संकेत को यानी उस अर्थ वाले गुलाब को उठाता है और उसे दूसरे स्तर के लिए सिर्फ संकेतक सिग्निफायर बना देता है।
अच्छा, पूरा संकेत अब नया संकेतक बन गया।
हाँ, अब इस नए संकेतक जो पहले संकेत था के साथ एक नया सांस्कृतिक संकेतित सिग्निफाइड जोड़ा जाता है, जैसे गुलाब के साथ रोमांटिक पैशन या प्यार का कॉन्सेप्ट।
तो अब गुलाब प्लस प्यार इक्वल्स टू नया संकेत।
एग्जैक्टली, और ये जो नया संकेत बनता है यही है मिथक। अब गुलाब सिर्फ फूल नहीं रहा, वो जुनून या प्यार का प्रतीक बन गया है। उसका मूल अर्थ पूरी तरह मिटा नहीं, पर उस पर एक नया सांस्कृतिक अर्थ चढ़ गया।
इसे किसी और उदाहरण से समझा सकते हैं, जैसे वो तिरंगे वाला उदाहरण आपने शायद पहले बताया था?
हाँ बिल्कुल, तिरंगा। पहले स्तर पर संकेतक तीन रंग का कपड़ा प्लस संकेतित भारत का राष्ट्रीय ध्वज इक्वल्स टू संकेत, ये भारत का झंडा है, ये सीधा मतलब है। अब मिथक शुरू होता है दूसरे स्तर पर, संकेतक बनता है पहले स्तर का संकेत यानी वो अर्थ वाला झंडा। अब इसके साथ नया संकेतित जुड़ता है, जैसे राष्ट्रीय गौरव, एकता, देशभक्ति, और नतीजा नया संकेत यानी मिथक तिरंगा अब सिर्फ झंडा नहीं बल्कि इन गहरी भावनाओं और विचारों का प्रतीक है।
समझ गया, मतलब पहले का सीधा मतलब एक खोल जैसा बन जाता है जिस पर नया कल्चरल मतलब लाद दिया जाता है। और चालाकी ये है कि पहला मतलब दिखता रहता है, इसलिए नया वाला स्वाभाविक लगता है।
एकदम सही, बार्थेस इसी को रूप और अवधारणा कहते हैं। मिथक पहले स्तर के संकेत को एक खाली रूप बनाता है, उसका मूल अर्थ थोड़ा पीछे हट जाता है और उसमें एक नई अक्सर विचारधारा वाली अवधारणा भर देता है।
आपने वो पेरिस मैच मैगजीन वाले कवर का भी जिक्र किया था?
हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। कवर पर एक अश्वेत सैनिक है, फ्रेंच वर्दी में झंडे को सल्यूट कर रहा है। रूप क्या है? सैनिक का सल्यूट करना, सीधा मतलब। अवधारणा क्या भरी गई? फ्रेंच साम्राज्य की महानता, जहां सारे उपनिवेशों के लोग, हर नस्ल के, खुशी खुशी फ्रांस की सेवा कर रहे हैं। ये मिथक फ्रेंच साम्राज्यवाद को अच्छा और सबको साथ लेकर चलने वाला दिखाता है, जबकि उसके पीछे का शोषण और हिंसा का इतिहास छुपा लेता है।
और इस पूरी प्रक्रिया का नतीजा क्या होता है? आपने कहा था बार्थेस कहते हैं कि मिथक अराजनीतिकृत भाषण है, मिथ हैज डीपॉलिटिसाइज्ड स्पीच है, इसका क्या मतलब?
इसका मतलब है कि मिथक का मुख्य काम है इतिहास को प्रकृति बनाना, मतलब वो किसी ऐसी चीज को लेता है जो इंसानों ने बनाई है, जो खास ऐतिहासिक और राजनीतिक कारणों से बनी है, और उसे ऐसे दिखाता है जैसे वो हमेशा से थी, नेचुरल हो, जैसे सूरज का उगना।
अच्छा, जैसे वो सैनिक का सल्यूट करना।
हाँ, वो एक राजनीतिक संदर्भ उपनिवेशवाद में हुआ था, लेकिन मिथक उसे एक स्वाभाविक अपने आप होने वाली देशभक्ति की तरह दिखाता है। इस तरह मिथक जो है वो समाज की मौजूदा व्यवस्था को, स्टेटस को नॉर्मल और प्राकृतिक बनाकर पेश करता है, फिर उस पर सवाल उठाना मुश्किल हो जाता है।
ये तो बहुत गहरी बात है।
और बार्थेज मिथक के पाठक की भी बात करते हैं।
हाँ।
मतलब हम इन मिथकों को कैसे लेते हैं? हाँ, वो कहते हैं हम तीन तरह से पढ़ सकते हैं। एक वो भोला पाठक जो मिथक को सच मान लेता है बिना सवाल किए। दूसरा मिथोलॉजिस्ट या आलोचक जो मिथक को पहचानता है, उसकी बनावट को समझता है कि कैसे रूप में अवधारणा भरी जा रही है। और तीसरा मिथक बनाने वाला जो जानबूझकर मिथक रचता है किसी खास असर के लिए। बार्थेज की किताब हमें दूसरा वाला पाठक बनाना चाहती है,
एक सजग क्रिटिकल रीडर।
बिल्कुल।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा के कुछ मुख्य संदेश निकालना चाहें,
की
टेकअवेज, तो वो क्या होंगे? मुझे लगता है पहला तो यही है, इतिहास का प्राकृतिकरण, नेचुरलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री।
ये समझना कि कैसे समाज में बनी चीजों को, जैसे जेंडर रोल्स या जाति व्यवस्था, अक्सर ऐसे दिखाया जाता है मानो ये नेचुरल हो, भगवान की देन हो, या हमेशा से ऐसे ही हो।
हाँ बिल्कुल। जैसे भारत में ये देख लीजिए, कभी कभी जाति व्यवस्था को परंपरा कहकर या कुछ लिंग आधारित भूमिकाओं को औरतों का स्वभाव कहकर सही ठहराया जाता है। बार्थेज के अनुसार ये मिथक बनाने की प्रक्रिया है, ये चीजें बनाई गई हैं, प्राकृतिक नहीं हैं। दूसरा पॉइंट है विचारधारा का अदृश्य होना, खासकर प्रभावशाली वर्ग की विचारधारा का। आपने बताया था बार्थेज कहते हैं कि बुर्जुआ वर्ग अपनी पहचान छुपाता है।
हाँ, वो अपने खास नजरिए को, अपने मूल्यों को सामान्य ज्ञान या मानव स्वभाव या सबकी भलाई की तरह पेश करता है। जैसे सफलता के कुछ पश्चिमी पैमाने हैं, बहुत पैसा कमाना, खास तरह की चीजें खरीदना, ये भारत में भी यूनिवर्सल लक्ष्य जैसे मान लिए जाते हैं। ये सवाल नहीं उठता कि ये पैमाने आए कहाँ से, किसके फायदे के हैं।
तीसरा, रोजमर्रा की चीजों की शक्ति। ये किताब बार बार याद दिलाती है कि साधारण से साधारण चीजें भी मतलब से भरी हैं। खाना, कपड़े, विज्ञापन, कुछ भी न्यूट्रल नहीं है।
सही बात है। भारत में ही देखिए कैसे कोई खास ब्रांड का फोन या गाड़ी स्टेटस सिंबल बन जाती हैं। ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये मिथक हैं जो हमारी इच्छाएं, हमारी पहचान गढ़ रहे हैं।
और चौथा, जो मुझे लगता है बहुत एम्पावरिंग है, आलोचनात्मक पठन एक राजनीतिक कार्य है।
क्रिटिकल रीडिंग एज अ पॉलिटिकल एक्ट।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मिथकों को पहचानना और उनका विश्लेषण करना सीख जाते हैं, तो हम सिर्फ पैसिव कंज्यूमर नहीं रहते, हम एक्टिव थिंकर बन जाते हैं। यह अपने आप में एक तरह का रेजिस्टेंस है। विज्ञापनों के दावों, नेताओं के भाषणों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स के पीछे छिपे संदेशों को समझना हमें ज्यादा आजाद बनाता है।
इस किताब में यकीनन कुछ ऐसी पंक्तियां होंगी जो इन विचारों को यादगार बनाती हैं, कुछ कोट्स?
हाँ, कई हैं। जैसे एक जगह वो कहते हैं, मिथक एक प्रकार का भाषण है, यह संचार की एक प्रणाली है, यह एक संदेश है, यह सिग्निफिकेशन का एक तरीका है, एक रूप है। ये बस ये बता रहा है कि मिथक कोई खास तरह की कहानी नहीं, बल्कि एक तरीका है जिससे कोई भी चीज गहरा छिपा मतलब देने लगती है।
और वो सबसे मशहूर वाली, ये मिथक का मूल सिद्धांत है, यह इतिहास को प्रकृति में बदल देता है।
ये तो जैसे पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। हाँ, कैसे इंसानों द्वारा बनाई चीजों को नेचुरल, अटल दिखा दिया जाता है। इसी से जुड़ी एक और बात है, मिथक का कार्य एक ऐतिहासिक इरादे को प्राकृतिक औचित्य देना है और आकस्मिकता को शाश्वत दिखाना है। मतलब किसी खास समूह के इरादों को ऐसे पेश करना मानो ये प्रकृति का नियम हो।
और वो सत्ता वाली बात, बुर्जुआ वर्ग को उस सामाजिक वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है जो नामित नहीं होना चाहता। ये दिखाता है कि कैसे पावर अक्सर गुमनाम रहकर काम करती है, अपनी विचारधारा को सबकी विचारधारा बनाकर।
और एक बहुत बारीक बात, मिथक न कुछ छुपाता है और न कुछ दिखाता है, ये विकृत करता है। मतलब मिथक सीधे झूठ नहीं बोलता, पर वो चीजों को ऐसे तोड़ मरोड़ देता है, उनका मतलब ऐसे बदल देता है कि एक खास नजरिया हावी हो जाता है।
ये सब तो बहुत सोचने वाली बातें हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इन विचारों का अपनी रोज की जिंदगी में क्या करें, प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है?
अरे बहुत इस्तेमाल है। सबसे पहले तो हमारी मीडिया लिटरेसी बढ़ती है। हम विज्ञापनों को सिर्फ सामान बेचने की कोशिश की तरह नहीं, बल्कि मिथक बनाने वाले संदेशों की तरह देखना शुरू कर सकते हैं।
जैसे?
जैसे जब कोई कार का एड आजादी बेच रहा हो तो हम पूछ सकते हैं, ये आजादी का मिथक कैसे बन रहा है, ये किस इच्छा को टारगेट कर रहा है। या जब कोई फूड डिलीवरी ऐप परिवार का साथ बेच रहा है तो क्या वो सिर्फ खाना बेच रहा है या रिश्तों के बारे में कोई खास आइडिया। हमें पूछना चाहिए असली प्रोडक्ट क्या है और बेचा जा रहा मिथक क्या है। भारत में फेयरनेस क्रीम के विज्ञापन रंग भेद के मिथक को कैसे मजबूत करते हैं, ये सवाल हमें जागरूक बनाते हैं।
और राजनीति को समझने में कैसे मदद मिलती है?
वहां भी ये लेंस बहुत काम का है। नेताओं की भाषा, उनकी तस्वीरें, उनके नारे, इनके पीछे कौन से मिथक काम कर रहे हैं। जब कोई नेता खुद को आम आदमी या फकीर कहता है तो वो कौन सा मिथक गढ़ रहा है, क्यों गढ़ रहा है। राजनीतिक नारे जैसे अच्छे दिन आएंगे या सबका साथ सबका विकास, ये सुनने में तो अच्छे हैं, पर बार्थेस हमें पूछना सिखाते हैं कि ये नारे किन सच्चाइयों को छुपाते हैं और किन मिथकों को बढ़ावा देते हैं।
और आजकल का सबसे बड़ा मैदान सोशल मीडिया।
हाँ बिल्कुल, इन्फ्लुएंसर कल्चर को समझने के लिए बार्थेस का नजरिया गजब का है। कैसे ऑथेंटिसिटी या प्रमाणिकता खुद एक मिथक बन गई है जिसे बेचा जाता है। कैसे लोग अपनी जिंदगी को एक कहानी की तरह दिखाते हैं जिसमें चीजें खरीदना, घूमना, गैजेट्स दिखाना एक अहम हिस्सा है। बार्थेस हमें दिखाते हैं कि सोशल मीडिया की असली जिंदगी भी अक्सर एक बहुत केयरफुली बनाई गई प्रस्तुति होती है।
और शायद सबसे जरूरी, अपने ही कॉमन सेंस पर सवाल उठाना, हमारी अपनी मान्यताएं जिन्हें हम नॉर्मल मानते हैं।
हाँ ये मुश्किल है पर जरूरी है। जैसे क्यों समाज में कुछ खास तरह के काम ज्यादा इज्जत वाले माने जाते हैं, क्यों बहुत ज्यादा मेहनत करना, हसल कल्चर, हमेशा अच्छा माना जाता है, क्यों घर खरीदना या शादी करना सबके लिए जरूरी लक्ष्य माने जाते हैं। बार्थेस हमें पूछना सिखाते हैं, ये मान्यताएं आई कहाँ से, क्या ये हमेशा से थीं, इनसे किसको फायदा होता है। ये सवाल हमें अपनी कंडीशनिंग को समझने में मदद करते हैं।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से सबसे बड़ा सबक क्या है, क्या लेकर जाएं हम?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया उतनी सीधी या न्यूट्रल नहीं है जितनी दिखती है। ये संकेतों, प्रतीकों, मिथकों का एक घना जाल है। हर चीज हमसे कुछ कह रही है, कोई संदेश दे रही है, संस्कृति लगातार हमसे बात कर रही है, और ये बातचीत कभी भी पूरी तरह मासूम नहीं होती। ये हमें सिखाती है कि चीजें बस ऐसी ही हैं नहीं होती, उनके पीछे इतिहास है, पावर है, विचारधारा है।
मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये कि खिलौनों जैसी चीज या वाइन जैसे पीने की चीज भी इतने गहरे कल्चरल और पॉलिटिकल मतलबों से भरी हो सकती हैं। ये दिखाता है कि विचारधारा सिर्फ बड़ी बड़ी बहसों में नहीं है, वो हमारे किचन में, हमारे फोन में, हर जगह है, बस उसे पहचानना सीखना है।
और मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो है इस नजरिए से मिलने वाली ताकत। जब हम मिथकों को पहचानना सीख जाते हैं तो हम दुनिया को ज्यादा गहराई से, ज्यादा सच्चाई से समझने लगते हैं। बार्थेस ने हमें दुनिया के संदेशों को डीकोड करने का एक शक्तिशाली औजार दिया है। ये ज्ञान हमें अपनी सोच और अपने फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल देता है, एक ज्यादा जागरूक नागरिक और इंसान बनाता है। शायद
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।